एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
आशीष तुझसे मांगते हैं खुदा, तू है जिंदा मसीह, सुन ले ये दुआ। आशीष तुझसे मांगते हैं खुदा, तू है जिंदा मसीह, सुन ले ये दुआ। तुझसे मांगते हैं खुदा, तू है जिंदा मसीह, सुन ले ये दुआ। स्तुति महिमा आए हैं हम तेरे चरणों में, करते हैं तेरी स्तुति महिमा तुझसे मांगते हैं खुदा तू जिंदा मसीह सुन ले ये दुआ सोचा मैंने बलू प्रभु ये शून्य तब मुझसे ये कहा जब मैंने सोचा मैंने बलू प्रभु ये शून्य तब मुझसे ये कहा सामर्थ्य प्रभु शक्ति देने वाला मैं यीशु मसीह तेरे साथ हूँ सामर्थ्य प्रभु शक्ति देने वाला मैं यीशु मसीह तेरे साथ हूँ तेरे साथ हूँ आशीष तुझसे मांगते हैं खुदा तू है जिंदा मसीह सुन ले ये दुआ तुझसे मांगते हैं खुदा तू है जिंदा मसीह सुन ले ये दुआ।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन गुजुर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। हमारे मनों को और हमारे हृदयों को खोल दे, विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें तेरे वचन के द्वारा आशीष दे और उन्हें तेरे राह में चलने के लिए मदद कर। हम सबों को तेरे नज़दीक ला पिता, और हम सबों को तेरे राज के लिए तैयार कर। और मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है मेरा पड़ोसी कौन है, और यह संवाद बाइबल से लूका 10 अध्याय का 25 से 37 पर दिया गया दृष्टांत पर आधारित है। यहूदियों के बीच यह सवाल मेरा पड़ोसी कौन है अंतहीन विवाद का कारण बना। उन्हें बुत परस्तों और सामरी लोगों के बारे में कोई संदेह नहीं था, ये अजनबी और दुश्मन थे, लेकिन अपने ही देश के लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भेद कहाँ किया जाना चाहिए? पुजारी, रबी, बुजुर्ग किसे पड़ोसी के रूप में मानना चाहिए? उन्होंने खुद को शुद्ध बनाने के लिए अनुष्ठानों के दौर में अपना जीवन बिताया। उन्होंने सिखाया कि अज्ञानी और लापरवाह भीड़ के संपर्क में आने से अपवित्रता पैदा होगी, जिसे दूर करने के लिए थकाव प्रयास की आवश्यकता होगी। क्या उन्हें अशुद्ध लोगों को पड़ोसी मानना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर मसीह ने अच्छे सामरी के दृष्टांत में दिया। उन्होंने दिखाया कि हमारे पड़ोसी का मतलब सिर्फ उस कलीसिया या आस्था का व्यक्ति नहीं है जिससे हम जुड़े हैं। इसका नस्ल, रंग या वर्ग भेद से कोई संबंध नहीं है। हमारा पड़ोसी हर वह व्यक्ति है जिसे हमारी मदद की जरूरत है। हमारा पड़ोसी हर वह आत्मा है जो दुश्मन द्वारा घायल और चोटिल किया गया है। हमारा पड़ोसी हर वह व्यक्ति है जो परमेश्वर की संपत्ति है। अच्छे सामरी का दृष्टांत एक कानून के विद्वान द्वारा मसीह से पूछे गए प्रश्न से आया था। जब उद्धारकर्ता शिक्षा दे रहे थे, एक वकील खड़ा हुआ और उनकी परीक्षा लेने लगा और पूछा, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? फरीसियों ने वकील से यह प्रश्न इस उम्मीद में पूछा था कि वे मसीह को उनके शब्दों में फंसा सके, और उन्होंने उत्सुकता से उनके उत्तर की प्रतीक्षा की। लेकिन उद्धारकर्ता ने किसी विवाद में भाग नहीं लिया। उन्होंने प्रश्नकर्ता से ही उत्तर मांगा, व्यवस्था में क्या लिखा है? उन्होंने पूछा, तू कैसे पढ़ता है? यहूदियों ने अभी भी यीशु पर सिनाई के दिए गए कानून के बारे में हल्के ढंग से बात करने का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने उद्धार के प्रश्न को परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन पर केंद्रित कर दिया। वकील ने कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मसीह ने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, ऐसा कर तो तू जीवित रहेगा। वकील फरीसियों की स्थिति और उनके कामों से संतुष्ट नहीं था। वह शास्त्रों का अध्ययन उनके वास्तविक अर्थ जानने की इच्छा से कर रहा था। उसे इस मामले में गहरी दिलचस्पी थी और उसने ईमानदारी से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? कानून की आवश्यकताओं के बारे में अपने उत्तर में उसने सभी औपचारिक और अनुष्ठान संबंधी उपदेशों को दरकिनार कर दिया। इनके लिए उसने कोई मूल्य नहीं बताया, बल्कि दो महान सिद्धांत प्रस्तुत किए जिन पर सारा कानून और व्यवस्था टिका हुआ है। इस उत्तर की उद्धारकर्ता की प्रशंसा ने उसे रबियों के साथ लाभकारी स्थान पर रखा। वे उसे कानून के व्याख्याता द्वारा आगे बढ़ाए गए किसी भी कथन को मंजूरी देने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते थे। मसीह ने कहा, ऐसा करो और तुम जीवित रहोगे। अपनी शिक्षाओं में उन्होंने हमेशा कानून को एक दिव्य एकता के रूप में प्रस्तुत किया, यह दिखाते हुए कि एक नियम का पालन करना और दूसरे को तोड़ना असंभव है, क्योंकि एक ही सिद्धांत सभी में चलता है। मनुष्य का भाग्य का निर्धारण संपूर्ण कानून के प्रति उसके आज्ञाकारिता से होगा। मसीह जानता था कि कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति से कानून का पालन नहीं कर सकता। वह वकील को स्पष्ट और अधिक आलोचनात्मक शोध की ओर ले जाना चाहता था, ताकि वह सत्य को पा सके। केवल मसीह के गुण और अनुग्रह को स्वीकार करके ही हम कानून का पालन कर सकते हैं। पाप के प्रायश्चित में विश्वास पतित मनुष्य को अपने पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम करने और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने में सक्षम बनाता है। वकील जानता था कि उसने ना तो पहली चार आज्ञाओं का पालन किया था और ना ही अंतिम छह आज्ञाओं का। मसीह के खोजी शब्दों के तहत उसे दोषी ठहराया गया था, लेकिन अपने पाप को स्वीकार करने के बजाय उसने उसे माफ करने की कोशिश की। सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय उसने यह दिखाने का प्रयास किया कि पूरा करना कितना मुश्किल आज्ञा है। इस प्रकार वह लोगों की नजरों में दोष सिद्धि को टालने और खुद को सही साबित करने की आशा रखता था। उद्धारकर्ता के शब्दों ने दिखाया था कि उसका प्रश्न अनावश्यक था, क्योंकि वह खुद इसका उत्तर देने में सक्षम था। फिर भी उसने एक और प्रश्न पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? फिर से मसीह ने विवाद में पड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक घटना बताकर सवाल का जवाब दिया जिसकी याद उनके श्रोताओं के मन में ताजा थी। उन्होंने कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और लुटेरों ने उसे घेर लिया और उसके कपड़े उतार लिए और उसे घायल कर दिया और उसे अधमरा छोड़ भाग गए। यरूशलेम से जेरिको की यात्रा में यात्री को यहूदियों के जंगल के एक हिस्से से होकर गुजरना पड़ता था। सड़क एक जंगली पथरीली घाटी की ओर जाती थी जो लुटेरों से भरी हुई थी और अक्सर हिंसा का दृश्य हुआ करती थी। यहीं पर यात्री पर हमला किया गया, उसका सारा कीमती सामान लूट लिया गया और उसे सड़क के किनारे अधमरा छोड़ दिया गया। जब वह इस तरह लेटा हुआ था तो एक पुजारी उस तरफ आया। उसने देखा कि वह आदमी घायल पड़ा हुआ है, अपने ही खून में लथपथ था, लेकिन उसने उसे कोई सहायता दिए बिना छोड़ दिया। वह दूसरी तरफ से चला गया। फिर एक लेवी दिखाई दिया, वह उस रास्ता से आ रहा था। यह जानने के लिए उत्सुक कि क्या हुआ था, वह रुका और पीड़ित को देखा। उसे लगा कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन यह एक उचित कर्तव्य नहीं था। वह चाहता था कि वह उस तरफ ना आए ताकि वह घायल आदमी को ना देख सके। उसने खुद को समझाया कि यह मामला उसका नहीं है और वह भी दूसरी तरफ से चला गया। वह वहाँ सोच रहा था कि वहाँ नहीं आता तो उसके लिए भला होता, वह उसे सहायता नहीं पहुँचाया। लेकिन उसी रास्ते से जा रहे एक सामरी ने उस पीड़ित को देखा और उसने वह काम किया जिसे करने से दूसरे लोगों ने मना कर दिया था। उसने नम्रता और दयालुता के साथ घायल व्यक्ति की सेवा की। जब उसने उसे देखा तो उसे उस पर तरस आया, बाइबल कहती है, और उसके पास गया और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर उसे अपनी गाड़ी पर बिठाया और उसे ले आया, उसे एक सराय में ले गया और उसकी सेवा की। और अगले दिन जब वह चला गया तो उसने दो पैसे निकाले और उन्हें मेजबान को दिया और उसे कहा, उसकी सेवा करना और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे मैं तुम्हें वापस आने पर चुका दूंगा। पुजारी और लेवी दोनों ने धर्मनिष्ठता का दावा किया, लेकिन सामरी ने दिखाया कि वह वास्तव में परिवर्तित हो गया था। पुजारी और लेवी के लिए काम करना उसके लिए अधिक सुखद नहीं था, लेकिन आत्मा और कार्यों में उसने खुद को ईश्वर के साथ सामंजस्य में साबित कर दिया। इस पाठ को देते हुए मसीह ने कानून के सिद्धांतों को सीधे जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया, अपने श्रोताओं को दिखाया कि उन्होंने इन सिद्धांतों को लागू करने में लापरवाही बरती है। उनके शब्द इतने स्पष्ट थे कि श्रोताओं को आलोचना करने का कोई अवसर नहीं मिला। वकील को पाठ में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी वह आलोचना कर सके। मसीह के संबंध में उसका पूर्वाग्रह दूर हो गया था, लेकिन उसने अपने राष्ट्रीय नापसंदगी को इतना दूर नहीं किया था कि वह सामरी का नाम लेकर उसका सम्मान कर सके। जब मसीह ने पूछा, अब इन तीनों में से कौन उसका पड़ोसी था जो चोरों के बीच गिर गया था, उसने उत्तर दिया, वह जिसने उस पर दया की। वह सामरी का नाम नहीं लिया या सामरी शब्द का उच्चारण नहीं किया, पर कहा कि जो उस पर तरस खाया वह उसका सही पड़ोसी था। तब यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर, जरूरतमंदों के प्रति ऐसी ही कोमल दया दिखा। इस तरह तुम यह साबित करोगे कि तुम पूरी व्यवस्था का पालन करते हो। प्यारो, मसीह ने उसे सिखाया, उसे बतलाया कि जा तुम भी ऐसे ही करो और तुम स्वर्गराज के लायक होगे। यहूदियों और सामरियों के बीच सबसे बड़ा अंतर धार्मिक विश्वास में अंतर था। यह सवाल कि सच्ची उपासना क्या है। फरीसी सामरियों के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कहते थे, बल्कि उन पर अपनी सबसे कटु गालियां बरसाते थे। यहूदियों और सामरियों के बीच इतनी गहरी दुश्मनी थी कि सामरी महिला को यह अजीब बात लगी कि मसीह ने उससे पानी मांगा। यह हम पाते हैं यूहन्ना 4 अध्याय में, यह कहानी हम पाते हैं यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बीच में जो व्यवहार हुआ उसके विषय में। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी महिला से पानी मांगता है? क्योंकि इंजिलवादी आगे कहते हैं, यहूदियों का सामरियों से कोई संबंध नहीं था। यह हम पढ़ते हैं यूहन्ना 4:9 में। और जब यहूदी मसीह के खिलाफ जानलेवा नफरत से इतने भर गए कि वे मंदिर में उसे पत्थर मारने के लिए उठ खड़े हुए, तो उन्हें अपनी नफरत को व्यक्त करने के लिए इससे बेहतर कोई शब्द नहीं मिला। क्या हम ठीक नहीं कहते कि तुम सामरी है और तुझ में शैतान है? यह हम पाते हैं यूहन्ना 8:48 में। यहूदी लोग यीशु पर यह आरोप लगा रहे थे, फिर भी याजक और लेवी ने वही काम करने से मना कर दिया जो प्रभु ने उन्हें सौंपा था। और एक घृणास्पद और तिरस्कृत सामरी को अपने ही देश के एक व्यक्ति की सेवा करने के लिए छोड़ दिया। सामरी ने यह आदेश पूरा किया था तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेगा। इस प्रकार उसने दिखाया कि वह उन लोगों से अधिक धर्मी था जिनके द्वारा उसकी निंदा की गई थी। अपनी जान जोखिम में डालकर उसने घायल व्यक्ति के साथ अपने भाई जैसा व्यवहार किया था। यह सामरी मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा उद्धारकर्ता हमारे लिए ऐसा प्रेम प्रकट किया जिसकी बराबरी मनुष्य का प्रेम कभी नहीं कर सकता है। जब हम घायल होकर मर रहे थे तब उसने हम पर दया की। उसने हमें दूसरी तरफ से नहीं छोड़ा और हमें असहाय और निराश होकर नाश होने के लिए नहीं छोड़ा। वह अपने पवित्र खुशहाल घर में नहीं रहा जहां उसे सभी स्वर्गीय सेनाएं प्यार करती थी। उसने हमारी गंभीर जरूरतों को देखा, उसने हमारा मामला संभाला और अपने हितों को मानवता के हितों के साथ जोड़ दिया। वह अपने दुश्मनों को बचाने के लिए मर गया। उसने अपने हथियारों के लिए प्रार्थना की। अपने स्वयं के उदाहरण की ओर इशारा करते हुए वह अपने अनुयायियों से कहता है, ये बातें मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। लिखा है यूहन्ना 15:17 में और यूहन्ना 13:34 में। पुजारी और लेवी उस मंदिर में पूजा के लिए गए थे जिसकी सेवा स्वयं परमेश्वर ने नियुक्त की थी। उस सेवा में भाग लेना एक महान और उच्च विशेष अधिकार था और पुजारी और लेवी ने महसूस किया कि इस तरह सम्मानित होने के बाद सड़क के किनारे एक अज्ञात पीड़ित की सेवा करना उनके लिए निचता थी। इस प्रकार उन्होंने उस विशेष अवसर की उपेक्षा की जो परमेश्वर ने उन्हें एक साथी प्राणी को आशीर्वाद देने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में दिया था। प्यारों, यहाँ पर हम पाते हैं यह सुंदर दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह लोगों को बतला रहे थे कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम करो। और हमारा पड़ोसी कौन है? हर एक कोई जो परमेश्वर का संपत्ति है, ना केवल हमारे समाज में जो रहते हैं, बल्कि हर एक कोई जिसे दुश्मन ने, शैतान ने घायल किया है और उनकी हमें सहायता की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें उनकी सहायता करने के लिए भेजा है। प्यारों, जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, आइए हम एक दूसरे का सहायता करें, अपने पड़ोसी का मदद करें, क्योंकि परमेश्वर का हुक्म यही है, जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं हम स्वर्ग राज के लिए तैयार होते हैं। परमेश्वर आप सबों को और मुझे बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर हम सबों को अपना पवित्र आत्मा दे कि हम उसके प्रेम को दूसरों से बांट सके और उसके राज के लिए तैयार हो। परमेश्वर हम सबों के साथ हो और आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास फिर आते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम सबों को तू आशीर्वाद दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं और उसे सुनकर तेरे राह में चलना चाहते हैं। हमें तेरा पवित्र आत्मा का मदद दे, हमें शक्ति दे पिता कि हम तेरे प्रेम को दूसरों को बांट सकें और दूसरों की सेवा कर सकें, क्योंकि तूने हमें इस धरती पर भेजा है दूसरे लोगों का मदद और सहायता करने के लिए। हम तुझसे अपने पूरे मन से प्रेम करें ताकि हम तेरे राज के लिए तैयार पाए जा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन।
चलने लगी, फिर अचानक से आई तूफान, लहरें भी उठने लगी, डर से कहने लगे क्या होगा अपना हाल, मौत की इन लहरों से साथ साथ तू है, एक इशारे से सब कुछ हो गया शांत, तूने ये क्या किया, ये क्या किया, तूने ये क्या किया, ये क्या किया,
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।